In my journal tonight, I shall write, "This has been one of the most inspiring sessions of any general conference I've attended. Everything has been of the greatest and most spiritual nature." Brothers and sisters, 6 months ago, as
भाइयों और बहनों, छह महीने पहले जब हम अपने महासम्मेलन में मिले थे, मेरी प्रिय पत्नी फ्रांसिस कुछ दिनों पहले बुरी तरह गिरने के कारण अस्पताल में थी। मई में कुछ हफ्तों के बाद अपने घावों पर विजय पाने के लिए बहादुरी से लड़ते हुए वह संसार से चली गई। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हमारा विवाह सॉल्ट लेक टेम्पल में 7 अक्टूबर 1948 में हुआ था। कल हमारे विवाह की 65वीं वर्षगांठ होगी। वह मुझे मेरे जीवन में सबसे प्रिय थी। वह मेरी सबसे भरोसेमंद साथी और मेरी घनिष्ठ मित्र थी। ये कहना कि मुझे उनकी याद आती है मेरी भावनाओं की गहराई का एहसास नहीं करा सकती। ये सम्मेलन अध्यक्ष डेविड ओ मैके द्वारा 12 प्रेरितों की परिषद के सदस्य के रूप में मेरी नियुक्ति के 50 साल दर्शाता है। इन सभी सालों में ऐसा समय कभी भी नहीं आया जब मुझे मेरी प्रिय पत्नी का पूरा और संपूर्ण समर्थन न मिला हो। उन्होंने अनगिनत बलिदान किए थे ताकि मैं अपनी नियुक्ति को अच्छी तरह से कर सकूं। मैंने कभी भी उनसे शिकायत का एक शब्द भी नहीं सुना था। जब मैं अक्सर दिनों और कभी कभी हफ्तों के लिए उनसे और बच्चों से दूर रहता था, वह सचमुच में एक फरिश्ता थी। मैं उन सबों का अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में फ्रांसिस के चल बसने पर प्रेम व्यक्त किया था। उनकी प्रशंसा और सहानुभूति को व्यक्त करते हुए संसार में हर जगह से सैकड़ों पत्र और कार्ड हमारे परिवार को भेजे गए थे। हमने दर्जनों फूलों के गुलदस्ते मिले हैं। हम उन अनगिनत योगदान का भी आभार व्यक्त करते हैं जो उनके नाम से गिरजे के जर्नल मिशनरी फंड में दिए गए थे। हम सबों की ओर से जिन्हें वे पीछे छोड़ गई हैं, मैं आपकी दया और हार्दिक अनुभूतियों का अत्यधिक आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे बिछड़ने के इस नाजुक समय से मैं एक बात जो मुझे सबसे अधिक दिलासा देती है वह यह है कि यीशु मसीह के सुसमाचार की मेरी गवाही और ज्ञान जो मेरे पास है कि मेरी प्रिय पत्नी अभी भी जीवित है। मैं जानता हूं कि हमारा बिछड़ना अस्थाई है। हम उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर के घर में मोहरबंद हुए थे जो पृथ्वी और स्वर्ग में बांधता है। मैं जानता हूं कि हम एक दिन फिर से मिलेंगे और दोबारा कभी अलग नहीं होंगे। यही ज्ञान मुझे शक्ति देता है। भाइयों और बहनों, ये भली भांति समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से कष्ट और दुख के बिना नहीं रह सकता। ना ही मानव इतिहास में कभी भी ऐसा समय था जिसमें अशांति और कष्ट रहे हों। जब हम जीवन में खराब परिस्थितियों का सामना करते हैं, हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे साथ क्यों? कई बार एक ऐसा लगता है कि इस दुख का कोई अंत नहीं है, हमारी परीक्षाओं से कोई छुटकारा नहीं। हम बिखरे हुए सपनों की निराशा और उम्मीदों के नष्ट होने की उदासी से घिर जाते हैं। हम बाइबल की याचना को कहने में शामिल होते हैं, क्या गिलाद में कोई बाम नहीं है? हम बेसहारा, दुखी, अकेला महसूस करते हैं। हमें निराशा के प्रिज्म के द्वारा अपने व्यक्तिगत विपत्तियों को देखने की प्रवृत्ति होती है। हम अपनी समस्या के समाधान के लिए व्याकुल हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि स्वर्गीय गुण धैर्य की अक्सर जरूरत होती है। हमारे पास जो कठिनाइयां आती हैं, वे अंत तक सहन की हमारी योग्यता की असली परीक्षा लेने के लिए होती है। एक मूलभूत प्रश्न का उत्तर हम सबको देना है, क्या मैं हिम्मत छोड़ दूं या क्या मैं इसे पूरा करूं? कुछ हिम्मत छोड़ देते हैं जब वे समय को उनकी चुनौतियों से उभारने के अयोग्य पाते हैं। पूरा करने के लिए जीवन के अंत तक सहना शामिल होता है। जब हम उन घटनाओं पर विचार करते हैं जो हम सबों के साथ होती है, अय्यूब के साथ हम कह सकते हैं, मनुष्य कष्ट भोगने के लिए बना है। अय्यूब खरा और सीधा व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय को मानता और बुराई से परे रहता था। अपने व्यवहार में धार्मिक, संपत्ति में धनी, अय्यूब ने ऐसी परीक्षा का सामना किया था जो किसी का भी विनाश कर सकती थी। उसकी संपत्ति चली गई, उसके मित्रों ने उसका तिरस्कार कर दिया, अपने कष्टों से घिरा हुआ, अपने परिवार के बिछड़ने से टूटा हुआ, उसे परमेश्वर की निंदा करने और मरने के लिए उकसाया गया था। उसने इस बहकावे का सामना किया और अपनी आत्मा की गहराई से कहा, देखो स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मैं और मेरा गवाह ऊपर है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आयु विश्वासी था। क्या हम भी ऐसा ही करेंगे जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं? जब कभी हम जीवन के बोझ तले दबे होना महसूस करते हैं, स्मरण रखें कि दूसरे भी ऐसे ही कठिन समय से गुजर चुके हैं। वे अंत तक सहनशील बने रहे और जब उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की। गिरजे के इतिहास में समय की परिपूर्णता का प्रबंध का समय उनके उदाहरणों से भरा हुआ है जिन्होंने संघर्ष किया और फिर भी दृढ़ और खुश रहे। कारण, उन्होंने अपना जीवन का केंद्र यीशु मसीह का सुसमाचार बना लिया था। यही हमें वह सब सहने की शक्ति देता है जिसे हम जीवन में अनुभव करते हैं। फिर भी हम कठिन चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन हम हिम्मत से उनका सामना करेंगे और इन सब पर विजय प्राप्त करेंगे। दर्द के बिस्तर से, आंसुओं से भरे तकिए से हम उस दिव्य आश्वासन और बहुमूल्य प्रतिज्ञा के द्वार स्वर्ग की ओर उठाए जाते हैं। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये दिलासा मूल है। जैसा कि मैं अपनी नियुक्ति की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संसार भर की हर तरफ यात्रा करता हूँ, मुझे बहुत सी बातों का पता चला है। उनमें ये सच्चाई भी शामिल है कि दुख और कष्ट सब जगह है। मैं उनके भावनात्मक दर्द और दुख का अंदाजा नहीं लगा सकता जो मैंने उनके घरों में देखा है। जब मैं उनसे मिला तो दुख, रोग, तलाक, बेटे या बेटी के भटकने के संघर्ष या पाप के परिणाम कष्ट झेल रहे हैं। सूची बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि अनगिनत समस्याएं हैं जिनका हम सामना करते हैं। केवल एक उदाहरण देना पाना कठिन है, और फिर भी जब कभी भी मैं चुनौतियों के बारे में सोचता हूँ, मेरे विचार में भाई ब्रेम्स की ओर चले जाते हैं, मेरे बचपन के संडे स्कूल शिक्षक। वे गिरजे के विश्वासी सदस्य थे। उनका दिल सोने का था। उसके और उसकी पत्नी के 8 बच्चे थे। उनमें से बहुत से उसी आयु के थे जो हमारे परिवार में थे। फ्रांसिस और मेरे विवाह के बाद हम उस वार्ड में गए थे। हमने भाई और बहन ब्रम्स और उसके परिवार के सदस्यों को विवाहों और फ्यूनरल्स के साथ साथ वार्ड के समारोहों में देखा था। 1968 में भाई ब्रम्स की पत्नी सैडी निधन हो गया था। वर्ष बीतने के बाद 8 बच्चों में से 2 बच्चे भी गुजर गए। एक दिन लगभग 13 साल पहले भाई ब्रैनम की सबसे बड़ी पोती ने मुझे फोन किया। उसने समझाया कि उसके दादा अपने 105वें जन्मदिन में पहुंच गए हैं। उसने कहा वह एक छोटे देखभाल केंद्र में रहते हैं, लेकिन प्रत्येक रविवार को अपने पूरे परिवार से मिलते हैं जहां वह सुसमाचार पाठ देते हैं। उसने आगे कहा, पिछले रविवार को दादा ने हमसे कहा था, मेरे प्यारो मैं इस हफ्ते मरने वाला हूं, क्या तुम टॉमी मानसून को बता दोगे, उन्हें मालूम है क्या करना है। अगली शाम मैं भाई ब्रैनम से मिला। काफी समय से मैं उसे नहीं मिला था। मैं उससे बात नहीं कर पाया था क्योंकि वह सुनने की शक्ति खो चुके थे। मैं उन्हें संदेश नहीं लिख सकता था क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। मुझे बताया गया था कि परिवार उनसे बात करने के लिए उनके दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पर मिलने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता था। कोई भी संदेश इसी तरह उन्हें दिया जाता था। मैंने भी उसी प्रक्रिया को किया और उनकी हथेली पर उनकी उंगली से टॉमी मॉनसन लिखा। जिस नाम से वह मुझे पहचानते थे। भाई ब्रैनम बहुत उत्साहित हो गए और उन्हें मेरा हाथ लिया और अपने सिर पर रख दिया। मैं जानता था कि उनकी इच्छा पुरोहित आशीष पाने की थी। जो ड्राइवर मुझे वहां ले गया था उसने मेरे साथ अपने हाथों को भाई ब्रैनम के सिर पर रखा और आशीष दी। बाद में उनकी दृष्टिहीन आंखों में आंसुओं की धारा फूट निकली। उसने आभारी होकर हमारे हाथों को पकड़ा था। यद्यपि उन्होंने आशीष को नहीं सुना था, लेकिन आत्मा ने इसे दृढ़ता से महसूस किया था और मुझे विश्वास है मैं जान गया था कि उसे आशीष दे दी गई थी जिसकी उसने आशा की थी। ये प्यारा इंसान देख नहीं सकता था, वह सुन नहीं सकता था। वह रात और दिन एक छोटे कमरे में कैद होकर रह गया था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और जो शब्द उसने बोले मेरे दिल को छू गए। धन्यवाद, उसने कहा, मेरा स्वर्गीय पिता ने मेरा बहुत भला किया है। एक हफ्ते के भीतर, ठीक जैसे भाई ब्रैनम ने कहा था, वह चल बसे। उसने कभी उनके बारे में नहीं सोचा जो उसके पास नहीं था। असल में वह हमेशा उसकी महान आशीषों का आभारी रहा था। हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें खुश होने के लिए इतना कुछ देता है, यह भी जानता है कि जब हम परीक्षाओं का सामना करते और इनसे उभरते हैं, हम सीखते हैं और विकसित होते और मजबूत बनते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे समय होंगे जब हम उन्हें अत्यंत दुख का अनुभव करेंगे, जब हम कष्ट सहेंगे और जब हमारी सीमाओं की परीक्षा ली जाएगी। फिर भी ऐसी कठिनाइयां हमारी भलाई के लिए हमारे अंदर परिवर्तन करती हैं, हमारे जीवन का फिर से उस तरह से निर्माण करती जैसा हमारा स्वर्गीय पिता हमें सिखाता है, और हम पहले से कुछ भिन्न बन जाते हैं, पहले से बेहतर, पहले से अधिक समझ, पहले से अधिक दयालु, पहले से मजबूत गवाही। हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए, न केवल सुरक्षित रहना और अंत तक सहना, बल्कि आत्मिक रूप से अधिक शुद्ध होना जब हम अच्छे और बुरे समय से गुजरते हैं। यदि उभरने के लिए चुनौतियां और हल करने के लिए समस्याएं ना हो, तो हम हमेशा वही रहेंगे जहां हम आज हैं। आनंद जीवन के हमारे लक्ष्य की ओर और कम या कोई प्रगति नहीं होगी। कवि ने कुछ ऐसे ही विचार इन शब्दों में कहे हैं। अच्छा तन सरलता से बड़ा नहीं होता। जितनी तेज आयु चलेगी उतना ही मजबूत वृक्ष होगा। जितना ऊंचा आकाश होगा उतनी ही ऊंची लंबाई होगी। जितना कठोर तूफान होगा उतना ही कठोर ताकत होगी। धूप और ठंड द्वारा, वर्ष और बर्फ द्वारा, वृक्षों में तना और मनुष्य में चरित्र का निर्माण होता है। हमारी परीक्षाओं, हमारे दुख, हमारे कष्ट की गहराई केवल हमारा स्वामी जानता है। केवल वही हमें कठिन समय में अनंत शांति देता है। केवल वही हमारी दुखी आत्मा को अपने दिलासा भरे वचनों से छूता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। चाहे यह उत्तम समय हो या सबसे खराब समय, वह हमारे साथ है। उसने वादा किया है कि वह कभी बदलेगा नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, क्या हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रतिज्ञा करेंगे, जो कि ना तो समय के साथ ना ही हमारे जीवन की चुनौतियों के अनुसार बदलता है। उसे याद करने के लिए हमें कठिनाइयों से गुजरने की जरूरत नहीं है, और उसे अपना विश्वास देने के लिए हमें तीन होने के लिए वाद्य नहीं किया जाना चाहिए। वे हमेशा हमारे अपने स्वर्गीय पिता के निकट होने का प्रयास करें। ऐसा करने के लिए हमें प्रतिदिन उससे प्रार्थना करनी चाहिए और उसे सुनना चाहिए। हमें वास्तव में उसकी हर क्षण जरूरत है, चाहे उत्तम समय हो या कठिनाइयों भरा समय। हमें हमेशा उसके वचन का स्मरण रखना चाहिए। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। अपनी आत्मा की संपूर्ण ताकत से मैं गवाही देता हूं कि परमेश्वर जीवित है और वह हमसे प्रेम करता है, और उसका इकलौता पुत्र हमारे लिए जिया और मारा गया, और कि यीशु मसीह का सुसमाचार ही वह प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार में रोशनी देती है। वह हमेशा हमारे जीवन में रोशनी देती रहे। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम, पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन।